ओम शांति। सभी सेवाधारी भाई बहने खुश हैं? काम दिया था कुछ करने को, हो रहा है? हो रहा है? बाबा के रूम में बैठ रहे हैं योग अभ्यास के लिए भाई लोग, हो रहा है? बैठ जाएं सभी। विंग्स के भी आए हैं स्पोर्ट्स वाले, यद्यपि क्लास तो उनके लिए है जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, फिर भी आप लोग सुने। हम सभी को अपने जीवन को परिवर्तन करना है और बाबा ने इसके लिए सहज विधियां बताई हैं। जो काम आज तक कठिन था उसको सहज कर दिया है। कठिन काम क्या था? कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता था, चाहता है, पर वो कर नहीं पाता। बाबा ने क्या ऐसा किया जो सहज जीवन चेंज होने लगा? मैं पहले आपका एक बात पर ध्यान दिलाऊं, आज या कल की मुरली में था, इस संसार को बदलने का जो बाबा का तरीका है वो आज था कल था? सुरेश भाई याद है? मुझे लगता आज ही था शायद। बहुत वंडरफुल तरीका, बड़ा सूक्ष्म तरीका संसार को बदलने का है, स्वयं भगवान का। कोई मनुष्य तो ये कार्य कर नहीं सकता, हम सब जानते हैं। मनुष्य तो अपने को ही बदल ले, अपने परिवार को बदल ले, वही काफी होता है। केवल शिव बाबा संसार को बदलता है, प्रकृति को बदलता है, वातावरण को बदलता है, मनुष्य आत्माओं को बदलता है, जीव जंतुओं को बदल देता है। क्या तरीका अपनाता है? वंडरफुल तरीका है जिसको मनुष्य नहीं जान सकते। मनुष्य की खोज ही नहीं है वहां तक, उसकी बुद्धि वहां तक चलेगी नहीं, काम नहीं करेगी। प्रकृति को बदलने के लिए देखिए, दो ही चीज बाबा यूज करता है, योग बल और दूसरा पवित्रता का बल। पवित्रता के बल से प्रकृति बदलती है, वायुमंडल बदलता है। योग बल से मनुष्य बदलते हैं, वातावरण बदलता है। और योग अग्नि से एक काम और क्या होता है बहुत बड़ा? विकर्म विनाश तो व्यक्तिगत काम है, एक बड़ा काम है ये जो पाप की दुनिया है वो समाप्त हो जाती है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य बदलने से सब कुछ बदलता है, इसलिए बाबा ने फोकस किया हरेक को बदलने पर। हरेक बदले, हरेक में क्या बदले? अपने संस्कारों को बदले, उससे पहले अपने विचारों को बदलें, बुद्धि को बदलें और इंद्रप्रताप कर्मों को बदलें। आज संसार में देखिए, बुद्धि का ये खेल संसार में अनेक लोग पाप कर रहे हैं, पर उन्हें ये बुद्धि नहीं है क्या समझने की कि वो पाप कर रहे हैं। वो पाप को ही ठीक मान रहे हैं, सब तो यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, कुछ गलती नहीं है। परंतु शिव बाबा ने आकर बुद्धि का परिवर्तन किया, उसमें सद्विवेक भरा और इससे पाप और पुण्य की पहचान हो गई। मैं ये बात सभी को बहुत अच्छी तरह सावधान करते हुए ध्यान में खिंचाता हूँ कि संसार में क्या बढ़ रहा है दिनों दिन, युवक विशेष ध्यान देंगे, मानसिक आगे बोलो तनाव, टोटल मानसिक कमजोरियां, किसी को डिप्रेशन, कोई बहुत परेशान, किसी को परीक्षा देने का मन ही नहीं, किसी को पढ़ने का मन नहीं, कोई जरा सी असफलता होने पर बहुत दुखी। आज का एक फोन सुनाऊं सवेरे, मैं थोड़ा समय फोन खोला तो एक कन्या का फोन आ रहा, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, कुछ पता नहीं क्या शब्द उसने बोला, डीआर या क्या, कहा एक बार असफल हो गई, अब दोबारा दिया है, कहा मुझे नींद नहीं आती, अब मुझे डर लगता है क्या होगा मेरा, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं। मैंने कहा पहले ही सोच बैठी तुम, अगर क्लियर हो गया तो। मैंने उसको कुछ अभ्यास तो सिखाए, फिर कहा लो मेरी माँ से भी बात करो, माँ क्या कहती, ये सारा दिन सोई रहती है और जब उठती है तो चिड़चिड़ी होती है, गुस्सा करती है, वो लड़ाई करती है। देखिए परेशानी, युवकों में मानसिक परेशानी, क्या सोचेंगी सब कन्याएं आगे आगे बैठी हैं, बहुत कन्याएं बैठी हैं, सफलता और असफलता अलग बात है, लेकिन जीवन तो एक महत्वपूर्ण चीज है ना, छोटी सी असफलता के कारण जीवन को बेकार कर देना ये समझदारी नहीं है। इसलिए कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं बन सकते, सभी बड़े इंजीनियर नहीं बनेंगे, सभी हायर एजुकेशन लेकर सीए नहीं बनेंगे, सीएस नहीं बनेंगे, सबका अपना अपना है, सभी की बुद्धि का लेवल अलग है ना। सभी जो माता पिता यहाँ बैठे हैं वो अच्छी तरह जान लें, जानते हैं ना, आत्माएं सब अलग अलग हैं, तो सबकी मन और बुद्धि का लेवल भी अलग अलग है। हर माता सोचती है मेरी लड़की क्लास में सबसे होशियार हो, लड़की से बेचारे से पढ़ान जाता, उसके 40% नंबर भी मुश्किल से आते हैं, माँ का दबाव है पढ़ो, क्या करेंगे चंद्रिका बहन, माँ का दबाव रहता है, ये भी बहुत आते हैं केस, माँ का दबाव, लड़की से पढ़ान जाता, मुश्किल से बहुत खींचतान कर ली तो 45% आ गए, माँ चाहती है 90% आए, सके आ रहे तुम क्यों नहीं पढ़ती, रात दिन पढ़ाने का सोचती है, रात दिन पढ़ने से नंबर ज्यादा आ जाएंगे, माताएं क्या समझती हैं, आ जाएंगे नहीं। हर एक की बुद्धि का लेवल अलग अलग है, जो होशियार बच्चे उन्हें बहुत पढ़ने की जरूरत थोड़ा ही पड़ती है रात दिन, बुद्धि का लेवल बढ़ाना चाहिए। तो सभी, मैं उसी बात पर फिर से आ जाता हूँ, मानसिक रूप से सभी को बहुत हेल्दी रहना है, स्वस्थ, मानसिक रूप से अपने को कमजोर नहीं करना है। ऐसे समय की ओर हम सब चल रहे हैं जिसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, अभी से जो कुछ होगा उसे बोलो स्वीकार करना ही है, इस ओर हम चल रहे हैं, समय ऐसा ही आ रहा है कि वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाहते हैं, जो मनुष्य चाहते हैं, जो सरकारें चाहती हैं, जो धन वाले चाहते हैं, वो सब नहीं होगा, अब वो होगा जो बोलो जो बाबा चाहेगा, अब वो होगा जो माताएं, जो रामा चाहेगा, अब कुछ और होगा ना, परिवर्तन का खेल प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें वो सब कुछ होगा जो हम नहीं सोच सकते। देखो मुझे एक माता का फोन आता है कुछ दिनों से, छोटी आयु की है, बच्चा गर्भ में है, बच्चे को चंद्रिका बहन न ब्रेन न खोपड़ी। मेडिकल साइंस बता नहीं पा रही ये सब क्यों हो रहा है। आज भी फोन था कि कल ही सोनोग्राफी कराई है, दोनों ही नहीं है। डॉक्टर कहते हैं भैया तो गर्भ में ही मर जाएगा या जन्म लेते ही मर जाएगा, लेकिन मां ने ज्ञान ले लिया तो मानसिक स्थिति को बहुत सुंदर बना लिया है और वो खुश थी कि जो बाबा की इच्छा है ठीक है। ऐसे ऐसे केस होते हैं कि मेडिकल साइंस के पास जिनका कोई उत्तर ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। सब डॉक्टर्स ने मीटिंग भी की बैठ के, कोई उत्तर नहीं मिला, ये क्या हो रहा है। दोनों स्वस्थ हैं पति पत्नी, तो हमें उन चीजों को स्वीकार करना है। सब देखेंगे अपने जीवन में, कार्यों में, पढ़ाई में, और जो परिवर्तन होगा संसार में, उसके लिए अपने को तैयार रखना है। बहुत सुंदर बात है जीवन में परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार करना। मनुष्य की क्या आदत है, जैसे चल रहे हैं वैसा ही चलते रहना चाहिए, लेकिन जो मनुष्य चेंज को स्वीकार करते हैं वो समय परिवर्तन होने के साथ साथ खुद परिवर्तित होकर समय को एंजॉय करते हैं, और जो चेंज को स्वीकार नहीं करते वो परेशान होते हैं। बहुत बड़ी चेंज हमारी भारत की कल्चर में पिछले 5-7 सालों में ही आ गई है, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत, भारत के लोग, भारत की माताएं और पिताएं उसको स्वीकार नहीं करते, तो बहुत कष्ट होता है परिवारों में। वो आप सब जानते हैं, आजकल की माताएं भी जानती हैं, कन्याएं भी जानती हैं। हमें चेंज को स्वीकार करना ही पड़ेगा, हमें अपने को बदलना है। अब मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, जो सब साधनाएं अच्छी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान दें। पहले तो मैं एक हंसी की बात आप सबको कहूं, सभी जो सेवा में आए हैं, भाई जो स्पोर्ट विंग में आए हैं वो तो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। आप सबको रोज 5 बार ड्रेस बदलनी है। कौन कौन तैयार हैं इस काम के लिए? कपड़े हैं इतने? बहुत हैं। कौन सी ड्रेस बदलनी है? समझ गए आप, बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर ड्रेस दी जिसको नाम दे दिया चमकीली ड्रेस, फरिश्ते की ड्रेस, प्रकाश की ड्रेस। तो जब क्लास में आओ, देखो पहला काम करना, सो के उठे, सोने की ड्रेस ये मिट्टी की थी, अभी चमकीली पहन ली। योग में गए चमकीली ड्रेस पहनकर, क्लास में आए बोलो चमकीली ड्रेस पहनकर। प्लान बना लो कहाँ 5 बार ये फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस पहननी है। लक्ष्य बना लो, 5 बार ड्रेस जरूर चेंज करनी है। कैसा रहेगा? होम्यो करेंगे? आपके पास हैं कपड़े इतने हैं? तो सभी इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, एकदम लाइट हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। आप कल संकल्प करना, मुरली सुनने आ रहे हैं, ड्रेस बदल के चलना है, फरिश्ते की ड्रेस पहन के आना है, कुर्ते पजामे और साड़ी नहीं, फरिश्ते की ड्रेस पहन के आना है, और फिर देखना मुरली सुनने का आनंद, ईश्वरीय महावाक्य सुनने का आनंद कितना अलौकिक होता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए ये बात आज मुझे क्यों याद आ रही थी, मैंने सोचा मैं आप सबका ध्यान दिलाऊं। मन को शांत करने के लिए, मन को भटकने से बचाने के लिए, कईयों में जो आदत है बहुत सोचने की उसको घटाने के लिए, अपने संस्कारों को सुखदायी बनाने के लिए, प्योरिटी को बढ़ाने के लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास, इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे, और इस स्थान पे जितना अच्छा ये अभ्यास हो सकता है, बाहर शहरों में नहीं। यहाँ वाइब्रेशंस दूसरी तरह के हैं, पहला हमारा स्वरूप अनादि आत्मा। अपने इस स्वरूप को हम क्लियर देखें, दो चीजों का ध्यान देंगे। बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम है, इस बुद्धि के नेत्र से अपने स्वरूप को विजुअलाइज करना, देखना, क्लियर दिखाई दे, मैं आत्मा ये हूँ, बिल्कुल यहाँ मस्तक के मध्य में। देखो जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं वो यहाँ न देखकर मस्तक मस्तिष्क के बीच में देखें, ब्रेन के बीच में, जहाँ से किरणें फैल रही हैं जो पूरे ब्रेन को जा रही हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने भी ये बात सिद्ध कर दी है चंद्रिका बहन, कि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से मैसेज मिल रहे हैं ब्रेन को, कुछ जा रहा है वहां से, सूक्ष्म तरंगे जा रही हैं। अभी तक उन्होंने उन्हें ये पता नहीं कि ये आत्मा ही है, क्योंकि वो देखी नहीं जा सकती किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन वहीं से ब्रेन को वाइब्रेशंस जा रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं, ऑर्डर्स जा रहे हैं। तो अपने को ऐसा देखेंगे, मैं ब्रेन के बीच में चमकती हुई ज्योति, रंग बिरंगी किरणें वाइब्रेशंस मुझसे फैल रहे हैं, और फिर साथ में चिंतन। बहुत सुंदर बात है, दिन में रोज कम से कम एक बार शांति में बैठकर, सवेरे या यहाँ जब आप आए, अंदर चले जाएं, मैं आत्मा, कितनी शांत, कितनी डीप साइलेंस मुझ में भरी हुई है, उसको रियलाइज करें, उसको महसूस करेंगे, कितनी शांति है मेरे अंदर, है या नहीं? बहुत है, हम उसे भूल बैठे हैं। कितनी प्योरिटी है मेरे अंदर, फील करें, उसे स्वीकार करें, अथाह सुख है मेरे अंदर। हम बाह्य संसार में पहुंचकर उस सुख को भूल जाते हैं, संसार का इफेक्ट होने लगता है। शक्तियां हैं मेरे अंदर बहुत, इसको अपने चिंतन में लाएंगे। केवल इतना ही नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा का चिंतन। दूसरा स्वरूप, ठहरो माताओं को बोलने दो, पीछे की माताएं, दूसरा आदि स्वरूप, आदि शुरू का, बिगनिंग का, ओरिजिनल, वो क्या है? देव स्वरूप। ये बात शिव बाबा ने ही आकर हम सबको डीपली रियलाइज कराई, तुम सतयुग में ये थे, अपना वो स्वरूप सामने लाओ, ये हूं मैं। देखो सिर पर क्या है, काया कैसी है, धन धान से कितनी संपन्नता है, प्रकृति का कितना सौंदर्य है, चारों ओर क्या है वातावरण में, उसको सामने देखो, और मैं वहां हूं, मेरा मूल स्वरूप। जब हम सृष्टि पर उतरे ब्रह्मलोक से, तो हम ऐसे थे। चिंतन करेंगे उसके बारे में, जितना डीप चिंतन होगा उतना ही वो स्वरूप इस स्वरूप में आने लगेगा, जीवन बदलने लगेगा, वो देव संस्कार हमारे अंदर आने लगेंगे। तीसरा स्वरूप पूज्य स्वरूप, भिन्न भिन्न स्वरूप हैं पूज्य, अनेक देवियां, शक्तियां, अनेक देवता, वो सब हमारी यादगारें हैं। ऐसा फील करेंगे, मैं मंदिर में स्थित हूँ, देव अपने पूज्य स्वरूप में, इष्ट स्वरूप में। चौथा है ब्राह्मण स्वरूप, और ये बहुत अच्छी बात है, कल परसों वरदान में भी ये बात थी, संगम युग की अपनी ईश्वरीय प्राप्तियों को याद करो तो प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएंगे। योग को बहुत सुंदर बनाने का ये तरीका है, मन की एकाग्रता को बढ़ाने का ये तरीका है। क्या क्या मिला है हमें इस जीवन में, हमने क्या क्या देखा है, जरा याद करो उसको। चाहे आप जितने समय से यहाँ आए हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, याद करें क्या क्या देखा इन आंखों से, वो देखा जो चारों युगों में कभी नहीं देखा जाता, वो पाया जो कभी नहीं मिलता है, संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया। कुछ खोजना जरूर, खोजने की आवश्यकता ही नहीं रही। गहन चिंतन में चलेंगे, मेरा ये जीवन कितना श्रेष्ठ हो गया, भरपूर हो गया। और पांचवा स्वरूप यही फरिश्ता स्वरूप, उसको भी सामने देखेंगे। सभी अपना अपना ये स्वरूप देखा करें, चाहे सूक्ष्म लोक में, बाबा जब साकार में थे तो ये बात बहुचर्चित थी, बाद में धीरे धीरे खत्म हो गई कि हम सभी का संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म लोक में स्थित है, देखो उसे वो कैसा है। हम अपने सामने भी इमर्ज कर सकते हैं अपना फरिश्ता स्वरूप और सूक्ष्म लोक में ऊपर भी, उसका अभ्यास करें। एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार कर लें सवेरे। जिनको योग में नींद आती है वो खत्म हो जाएगी, जिनका योग नहीं लगता उनका योग बहुत अच्छा लगने लगेगा, जिनको धारणाएं कठिन लगती हैं उनकी धारणाएं सरल हो जाएंगी, जिनका योग नहीं लगता विशेष रूप से मन बहुत भटकता है, कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है, सब ठीक हो जाएगा। एकाग्रता के लिए सभी एक सुंदर बात याद रखेंगे, ध्यान से सुन ले, माताएं भी भाई भी सभी, हम सभी के मन में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति, रचनात्मक शक्ति है। मनुष्य का मन क्यों भटकता है, इसके उत्तर तो बहुत हैं, किसी का कहीं किसी का कहीं, लेकिन एक बात पर सभी आज ध्यान देंगे, जो मनुष्य अपने मन में सुंदर संकल्पों की रचना नहीं करते, उनका मन दूसरी चीजों के अधीन रहकर भटकता जाता है। आजकल क्या हो गया युवक, सुने सभी ध्यान से, आप सभी के पास एक बहुत सुंदर बुद्धि है, बहुत सुंदर मन है, लेकिन क्या हो रहा है, मान लो एक युवक, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, एक युवक दो चार घंटे टीवी पर, दो चार घंटे मोबाइल पर, दो चार घंटे नेट पर समय दे रहा है, तो उसके मन में अपने विचार नहीं उठेंगे। कौन से विचार उठेंगे, जो देखा, जो देखा, जो सुना, उसके विचार उसके मन में उठेंगे, तो माइंड की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो समाप्त होती जाती है, दबती जा रही है युवकों की। इस पर बहुत ध्यान देना है। जो युवक कुछ महान कार्य करना चाहते हैं पढ़ाई के फील्ड में कहीं भी, उन्हें इस क्रिएटिव एनर्जी को जागृत रखना चाहिए, यूज करना चाहिए। इसलिए जो बहुत समय इन साइंस के साधनों में दिया जाता है उससे बचना चाहिए। और एक बात युवकों को ध्यान रखनी है, युवक बहुत बैठे हैं जो नए आए स्पोर्ट्स में, वो भी ध्यान दें, बहुत सारे युवकों को क्या हो रहा है, इंटरनेट से बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और बहुत इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है उनके मन में, कंफ्यूजन। ये एक नई माया है, वो देख रहे इसलिए कि बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हो जाए, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मनुष्य के मन को विचलित करती है, उसकी बौद्धिक शक्ति को नष्ट करती है। इसलिए क्रिएटिव एनर्जी को यूज करना है सबको। तो सभी बहुत ध्यान दें, बाबा के महावाक्यों में रोज बहुत सुंदर सुंदर बातें आ रही हैं। आज का वरदान और स्लोगन भी बहुत ही सुंदर थे, जो अपने को ईश्वरीय सुखों से भरपूर कर लेते हैं, ये निशानी है परमात्मा प्यार की। हमारा भी उससे बहुत प्यार है और उनका भी हमसे बहुत प्यार है। इसका प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, प्रूफ होगा, ईश्वरीय सुखों से स्वयं को भर लेना बहुत जरूरी हो गया है। संसार में लोग सुख ढूंढ रहे हैं किधर? कोई पैसे में, कोई भोजन में, कोई साधनों में, कोई बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने में, लेकिन असली सुख कहाँ है? सोल कॉन्शियस, सोने में। बाबा की महावाक्य सभी को याद है, अतिंद्रिय सुख पूछना हो हाँ उन गोप गोपियों से पूछो। अब ये भी जोड़ते हैं बाबा, जो सोल कॉन्शियस रहते, आत्मविमानी बनकर रहते हैं, देहभान के बॉडी कॉन्शियसनेस के सब जो साधन है, विस्तार है, वो मनुष्य के सुखों को छीन रहे हैं। मैं आप सभी का आगे बढ़ने से पहले एक चीज पर और ध्यान दिला देता हूँ। सभी विशेषकर इस स्थान पर बैठकर उन सभी लोगों को अच्छे वाइब्रेशंस रोज देंगे। किने किने मेजर साहब, नेपाल के उन लोगों को जिन्हें बहुत कष्ट पहुंच रहा है, पहुंचा है, कष्ट खत्म नहीं हो गया कि समाचार आने बंद हो गए तो कष्ट खत्म हो गया, समाचार अलग चीज है। सोचो दुख के पहाड़ गिर गए वहां, वैसे तो पहाड़ गिरे ही हैं, पर दुखों के पहाड़ भी गिर गए। सुना है ना सबने बहुत कुछ। मुझे आज याद आ रही थी एक बात के, जब पिछले साल उत्तराखंड में हुआ था तो एक माता की कहानी थी। माता के दो बच्चे जिन्हें वो घुमाने ले गई थी, और भी गए होंगे साथ में, दोनों बच्चे ठंड से मर गए। अब वहां कोई साधन ही नहीं था, बेचारी बैठी रही, अब क्या हाल होगा उस माँ का जिसके दो बच्चे डेड पड़े हैं उसके सामने। आखिर बेचारी ने दोनों को जल में बहा दिया, पानी तेजी से बहाता जा रहा था, दोनों को बहा दिया। सोच सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी जब वो घर लौटी होगी। चार तो उसको भी बहुत बार आए होंगे कि मैं भी बह जाऊं, आए होंगे या नहीं, मैं किस मुंह से घर जाऊंगी। ऐसी आत्माओं के लिए हम सभी को शांति के शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं, इसलिए सभी इस महान सेवा पर बहुत ध्यान देंगे। सभी भाई बहने जो सेवा में आए, एक टाइम भी फिक्स कर सकते हैं। मैं एक टाइम बता देता हूं आपको, सवेरे और शाम का, तब भी करें। आप अपना अलग से समय लेकर भी कर सकते हैं व्यक्तिगत, सवेरे 4:30 से 5:45, शाम को 7:15 से 7:30। जो योग में बैठते हैं वो यहाँ बैठकर करें। आप अलग से भी कर सकते हैं सवेरे शाम इसी टाइम या कोई और टाइम, परंतु यदि हम सब एक साथ वाइब्रेशंस देते हैं तो उसका कलेक्टिवली इफेक्ट बहुत सुंदर होता है। इसलिए उन आत्माओं को जो चले गए, उन आत्माओं को जो हैं, जिनके परिवार वाले चले गए, जिनके मकान दुकान धन संपदा सब नष्ट हो गई, जिनको खाने को भी कुछ नहीं है, उन सभी को सुंदर योग के वाइब्रेशंस देंगे, ताकि क्या होगा इन वाइब्रेशंस से, जिनको शांति चाहिए उनको शांति प्राप्त होगी, जिनको सहारा चाहिए उन्हें सहारे की अनुभूति होगी। देखिए मान लो एक उदाहरण ले लें, एक व्यक्ति बच गया है, उसके सब परिवार नष्ट हो गए, घर टूट गया है, काम धंधा गया, उसके पास कुछ नहीं है। आपने उसे शक्तियों के वाइब्रेशंस दिए, उसे सहारे की अनुभूति होगी और इन शक्तियों के वाइब्रेशन से उसको साधन उपलब्ध होने लगेंगे, ताकि वो अपना जीवन आगे बढ़ा सके। कुछ बच्चे बच गए जिनके माँ बाप चले गए, घर चले गए, कोई उन्हें पहचानता नहीं, कोई उन्हें खिलाने वाला नहीं, ऐसे बच्चों को सहारा मिल जाएगा, कोई न कोई उन्हें अडॉप्ट कर लेगा। हमारे योग के वाइब्रेशंस बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे। एक और बहुत बड़ा काम होगा जिससे आप सब परिचित हो गए हैं अब ये सब देखकर टीवी पर, बड़े बड़े मकान गिरे, बहुत लोग दब गए। दबने वालों का हाल कैसा होता है, 80 घंटे के बाद एक को निकाला था। कुछ ऐसे भी लोग वहां रह जाते हैं जो दबे रहते हैं, जिन्हें निकाला नहीं जा सकता, गांव में पहुंचते ही नहीं लोग, दबे पड़े हैं अंदर, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे योग के वाइब्रेशंस उन्हें देह से मुक्त करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक एक मिनट गुजारना युगों के बराबर लगेगा। वो भगवान से पुकारते हैं, हमें मुक्त करो, यहां से ले चलो, मृत्यु का आह्वान करते हैं। ऐसे में हमारे शक्तियों के वाइब्रेशंस उन्हें मुक्ति का वरदान देते हैं। तो सभी भाई बहने पसंद हैं ये काम? सबसे बड़ा पुण्य, खाना तो कोई भी दे सकता है, लेकिन दो बार खाना दे देगा फिर वो भूखा ही रहेगा ना। हमारे योग के वाइब्रेशंस उन्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। इन वाइब्रेशंस में बहुत बड़ी पावर रहती है जो सब कुछ क्रिएट करते हैं उनके लिए। अगर उन्हें दवाई नहीं मिल रही तो कोई दवाई देने आ जाएगा, उन्हें कोई चोट लग गई है, पीड़ा बहुत हो रही है, उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा पुण्य है जो योगी आत्माओं के अलावा कोई नहीं कर सकता, और इस पुण्य का फल भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो सभी रोज 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को, बोलो स्वीकार है? सभी, इस पुण्य से आपको बहुत फायदे होंगे, आपके घर निर्विघ्न बन जाएंगे, आपके लिए सफलता का मार्ग खुल जाएगा। जो बाधाएं आ रही हैं जीवन में, जो आपको सफल नहीं होने दे रही हैं, वो बाधाएं हट जाएंगी। इसलिए बाबा ने हमेशा कहा है, कहा था, सकास देने की सेवा में बिजी हो जाओ, सकास माना वाइब्रेशंस, तो तुम्हारा जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। तो सभी यहां आकर ये पुण्य भी करेंगे और अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाएंगे। इन साधना की बहुत जरूरत है हम सबको, अपने लिए भी और आने वाले समय को फेस करने के लिए भी। एक बहुत बड़ी चुनौतियां, बहुत बड़े चैलेंजेज हमारे सामने आ रहे हैं, हमें उन्हें फेस करने के लिए अपने को शक्तिशाली बनाना ही है। कमजोर आत्माओं को बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि संसार में हवा कुछ और चल पड़ी है, कुछ और चलने वाली है, जिसे हम सब जानते हैं। तो सभी अपने जीवन को चेंज करने का संकल्प करें। यहीं जो भी आप सब सेवा में आए हैं, यहां से जाएं तो वैसे नहीं जाएंगे जैसे आए थे, ठीक है, पसंद है कन्याओं को? वैसे नहीं जाएंगे जैसे आए थे, अपने में चेंज करके जाना है। और मैं आज जो मैंने आपको कहानी सुनाई, एक दो घटना, उससे यही आप सबको कहता हूं, कन्याओं को और युवकों को, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। हार जीत, सफलता असफलता, ये खेल चलता रहेगा। हिम्मत नहीं हारना है, ये काम बहुत अच्छा करना है। आज ही एक और फोन था, किसी ने कहा मैं बैंक एम्प्लॉइज के लिए एग्जाम दे रही थी, लड़की थी, 3 बार मैं असफल हुई, इस बार मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया है, मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, अभी कुछ दिन के बाद इंटरव्यू है तो मैं क्या करूं, मेरे से पूछा। तो जीवन में बहुत बड़ी क्वालिटी है हारने के बाद भी हार न मानना। हारेंगे ही नहीं हम मन से, बाहर से ही तो हार गए, मन से हारेंगे नहीं। ऐसे हिम्मतवान बनकर सभी को चलना है। और इसके लिए क्या स्वमान का अभ्यास करेंगे सभी? मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिमान की शक्तियां मेरे पास हैं, वो स्वयं भी मेरे पास है, और इस तरह के विचार करते रहेंगे, आज हार हुई है कल जीत होगी, आज कहीं हम असफल हुए हैं कल हमें सफलता प्राप्त होगी। बस ये सभी यहाँ से सीख कर जाएंगे तो जीवन में हमेशा कदम आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे हटने का अनुभव नहीं होगा, चाहे फील्ड योग की साधनाओं का हो, लौकिक पढ़ाई का हो, जो प्राप्त करने का हो और किसी विघ्न को समाप्त करने का हो। हिम्मत कभी नहीं हारना है, जहाँ हिम्मत है वहाँ ईश्वरीय मदद है। ओम शांति। अब 3 मिनट, सभी 3 मिनट ऐसे अभ्यास में बैठेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और ऊपर से बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा।